नमस्ते, मैं आराफ हूँ। नाइननाट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। एरिक एस रेमंड की द कैथेड्रल एंड द बाजार, लिनक्स, फेचमेल और उभरती ओपन सोर्स संस्कृति के अनुभवों पर आधारित निबंधों का प्रभावशाली संकलन है। इसका केंद्रीय निबंध पहली बार 1997 में प्रस्तुत हुआ और बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। रेमंड सॉफ्टवेयर निर्माण की दो अलग कार्य पद्धतियों की तुलना करते हैं। कैथेड्रल मॉडल में सीमित विशेषज्ञों का छोटा समूह है योजनाबद्ध ढंग से अपेक्षाकृत बंद वातावरण में कोड बनाता है। बाजार मॉडल में विकास सार्वजनिक होता है, शुरुआती संस्करण जल्दी जारी होते हैं और विस्तृत समुदाय सुधार में भाग लेता है। पुस्तक का उद्देश्य केवल मुक्त स्रोत के पक्ष में तर्क देना नहीं है, बल्कि यह समझाना भी है कि विकेंद्रीकृत सहयोग जटिल तकनीकी उत्पादों में गुणवत्ता, गति और अनुकूलन क्षमता कैसे बढ़ा सकता है। रेमंड के लिए लिनक्स कोई अपवाद मात्र नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि सही नेतृत्व, साझा समस्या और खुली समीक्षा के साथ बिखरे योगदान एक संगठित प्रणाली बना सकते हैं। यह तकनीकी विश्लेषण के साथ हैकर संस्कृति, प्रेरणा और सॉफ्टवेयर अर्थव्यवस्था पर भी विचार करती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, कैथेड्रल और बाजार नियंत्रण के दो अलग विकास मॉडल पुस्तक का मूल रूपक सॉफ्टवेयर विकास के संगठन को समझने का साधन है। कैथेड्रल मॉडल उस निर्माण शैली को दर्शाता है जिसमें डिजाइन, निर्णय और कोड पर नियंत्रण कुछ विशेषज्ञों के पास रहता है। संस्करण अपेक्षाकृत कम जारी किए जाते हैं क्योंकि टीम पहले आंतरिक रूप से उत्पाद को पर्याप्त परिपक्व बनाना चाहती है। रेमंड मानते हैं कि यह तरीका अनुशासन और वास्तुशिल्पीय एकरूपता दे सकता है, विशेषकर जब किसी उत्पाद की दिशा स्पष्ट हो। लेकिन इसका जोखिम यह है कि वास्तविक उपयोगकर्ताओं की समस्याएं और वैकल्पिक समाधान देर से दिखाई देते हैं। इसके विपरीत बाजार मॉडल में स्रोत कोड और विकास प्रक्रिया व्यापक समुदाय के सामने रहती है। अलग कौशल, जरूरतों और दृष्टिकोण वाले लोग त्रुटियां पहचानते हैं, सुधार प्रस्तावित करते हैं और उपयोग के नए संदर्भ सामने लाते हैं। रेमंड लिनक्स विकास को इसका प्रमुख उदाहरण बनाते हैं। बाजार का अर्थ नेतृत्वहीन अराजकता नहीं है। इसके लिए एक ऐसा अनुरक्षक चाहिए जो योगदानों को चुने, दिशा स्पष्ट रखे और काम करने वाले बदलावों को जोड़े। इसलिए पुस्तक का वास्तविक विरोध केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच पूर्ण चुनाव नहीं, बल्कि बंद निर्माण और नियंत्रित खुले सहयोग के बीच है। इसका मुख्य प्रश्न है कि जटिलता बढ़ने पर अधिक आंखें और अधिक प्रयोग अव्यवस्था पैदा करते हैं या बेहतर समाधान खोजते हैं। दूसरा, जल्दी जारी करो, बार बार जारी करो, प्रतिक्रिया को विकास का इंजन बनाना रेमंड का सबसे प्रसिद्ध व्यावहारिक सिद्धांत है। जल्दी जारी करो और बार बार जारी करो, इसका आशय अधूरा और अनुपयोगी उत्पाद भेजना नहीं है। विचार यह है कि जैसे ही सॉफ्टवेयर का कोई उपयोगी चलने योग्य रूप उपलब्ध हो, उसे वास्तविक उपयोगकर्ताओं और सहयोगियों तक पहुंचाना चाहिए। इससे विकास टीम अनुमान के बजाय प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया पर काम कर सकती है। उपयोगकर्ता उन परिस्थितियों में सॉफ्टवेयर चलाते हैं जिनकी कल्पना मूल लेखक ने शायद ना की हो, इसलिए वे दोष, संगतता की समस्याएं और जरूरी सुविधाएं शीघ्र उजागर कर देते हैं। फेचमेल पर रेमंड का अनुभव इस तर्क का आधार है। उन्होंने परियोजना को अकेले लिखे जाने वाले उत्पाद की तरह नहीं, बल्कि उपयोगकर्ताओं और योगदानकर्ताओं के साथ विकसित होने वाले समाधान की तरह संभाला। छोटे लगातार संस्करण बदलावों को सीमित रखते हैं। किसी गलती का असर लंबे विकास चक्र के अंत में होने वाले बड़े और जोखिमपूर्ण विमोचन जितना व्यापक नहीं होता। साथ ही योगदान देने वाले लोग अपने सुझाव या सुधार को शीघ्र शामिल होते देखते हैं, जिससे भागीदारी बनी रहती है। फिर भी यह सिद्धांत हर स्थिति में स्वतः लागू नहीं होता। जल्दी विमोचन के लिए परीक्षण, संस्करण नियंत्रण, स्पष्ट बदलाव विवरण और जिम्मेदार अनुरक्षण चाहिए। पुस्तक का स्थायी सबक गति मात्र नहीं, बल्कि सीखने की गति बढ़ाना है। लगातार विमोचन विकास को एक बड़ी अंतिम परीक्षा के बजाय निरंतर सत्यापन की प्रक्रिया बनाता है। तीसरा, लिनक्स का नियम, व्यापक सहकर्मी समीक्षा से दोषों को समझने योग्य बनाना। रेमंड द्वारा लोकप्रिय बनाया गया लिनक्स का नियम कहता है कि पर्याप्त आंखें होने पर सभी बग उथले हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बड़ी भीड़ हर त्रुटि को अपने आप ठीक कर देगी। किसी बग को उथला बनने के लिए पहले उसका दिखाई देना, पुनरुत्पादन योग्य होना और ऐसे लोगों तक पहुंचना आवश्यक है जिनके पास उसे समझने की क्षमता और प्रेरणा हो। पुस्तक का तर्क है कि खुला स्रोत इन शर्तों को मजबूत कर सकता है, क्योंकि अनेक उपयोगकर्ता अलग मशीनों, नेटवर्कों और कार्यभारों में एक ही कोड चलाते हैं। बंद टीम के पास कुशल इंजीनियर हो सकते हैं, पर उसका परीक्षण वातावरण सीमित होता है। बाजार मॉडल विविधता को परीक्षण संसाधन में बदलता है। कोई उपयोगकर्ता दोष की रिपोर्ट करता है, दूसरा उसके कारण का अनुमान लगाता है, तीसरा सुधार भेजता है और अनुरक्षक उसे समीक्षा के बाद शामिल करता है। इस चक्र में गुणवत्ता का स्रोत केवल मूल लेखक की प्रतिभा नहीं बल्कि साझा निरीक्षण और त्वरित प्रतिक्रिया है। रेमंड की बात को आज सावधानी से पढ़ना चाहिए। अधिक आंखें तभी उपयोगी हैं जब रिपोर्टों को छांटने, सुरक्षा जोखिमों की जांच करने और सुधारों की समीक्षा करने की व्यवस्था हो। निष्क्रिय दर्शक गुणवत्ता नहीं बढ़ाते। अतः नियम भीड़ की जादुई बुद्धिमत्ता का दावा नहीं है बल्कि खुली पहुंच, सक्रिय समुदाय और सक्षम रखरखाव के संयुक्त प्रभाव का सिद्धांत है। चौथा, उपयोगकर्ता को सह विकासक मानने से समस्या की परिभाषा बदलती है। द कैथेड्रल एंड द बाजार का महत्वपूर्ण योगदान यह है कि यह उपयोगकर्ता को केवल तैयार उत्पाद का उपभोक्ता नहीं मानती। बाजार मॉडल में सक्षम उपयोगकर्ता बग रिपोर्टर, परीक्षक, दस्तावेज लेखक, फीचर प्रस्तावक और कभी कभी कोड योगदानकर्ता भी हो सकता है। इससे सॉफ्टवेयर की समस्या परिभाषा अधिक वास्तविक बनती है। मूल डेवलपर किसी उपकरण के संभावित उपयोगों का अनुमान लगाता है, जबकि समुदाय रोजमर्रा के उपयोग में उन किनारों को देखता है जहां डिजाइन टूटता है या बेहतर बनाया जा सकता है। रेमंड के फेचमेल संबंधी अनुभव में यह बात स्पष्ट है, परियोजना का विकास केवल लेखक की आरंभिक योजना का निष्पादन नहीं था। उपयोगकर्ताओं की जरूरतों और पैचों ने उसके विकास पथ को प्रभावित किया। पुस्तक इस प्रकार डिजाइन को स्थिर खाका नहीं बल्कि उपयोग, प्रतिक्रिया और संशोधन के चक्र के रूप में देखती है। यह दृष्टि विशेष रूप से उन उपकरणों में उपयोगी है जिनके उपयोगकर्ता तकनीकी रूप से सक्षम हो और अपनी समस्याओं को स्पष्ट रूप से बता सके। लेकिन समुदाय की हर मांग को स्वीकार करना भी उचित नहीं। अलग उपयोगकर्ताओं की प्राथमिकताएं टकरा सकती है और बहुत अधिक सुविधाएं सॉफ्टवेयर को बोझिल बना सकती है, इसलिए अनुरक्षक की भूमिका निर्णायक रहती है। उसे समुदाय से सीखना है पर परियोजना की सादगी, दिशा और गुणवत्ता की रक्षा भी करनी है। खुलापन निर्णय की जिम्मेदारी समाप्त नहीं करता, उसे अधिक पारदर्शी बनाता है। अंत में हैकर संस्कृति, स्वैच्छिक प्रेरणा और ओपन सोर्स की आर्थिक सीमा। रेमंड सॉफ्टवेयर विकास को केवल प्रबंधन प्रक्रिया नहीं बल्कि प्रेरणा और समुदाय का प्रश्न भी मानते हैं। पुस्तक में हैकर शब्द का अर्थ कंप्यूटर अपराधी नहीं बल्कि जिज्ञासु, दक्ष और समस्याओं को सुरुचिपूर्ण ढंग से हल करने वाला तकनीकी उत्साही है। इस संस्कृति में प्रतिष्ठा, उपयोगी योगदान, रोचक समस्या पर काम करने की स्वतंत्रता और साथियों की मान्यता महत्वपूर्ण प्रेरक है। बाजार मॉडल इसलिए चल सकता है क्योंकि कुछ लोग साझा उपकरण को बेहतर बनाने में निजी और सामुदायिक दोनों प्रकार का मूल्य देखते हैं। यह दृष्टि उस धारणा को चुनौती देती है कि गुणवत्तापूर्ण काम के लिए केवल वेतन, आदेश और औपचारिक पदानुक्रम ही आवश्यक है। कोई डेवलपर अपनी जरूरत के कारण सुधार करता है, फिर उस सुधार को सार्वजनिक करके दूसरों के लिए उपयोगी बनाता है। समुदाय उस योगदान को जांचता और आगे बढ़ाता है। इस प्रक्रिया में व्यक्तिगत रुचि और सामूहिक लाभ साथ आ सकते हैं। फिर भी पुस्तक की ऐतिहासिक आशावादिता की एक सीमा है। स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर परियोजनाओं को दीर्घकालिक रखरखाव, उबाऊ लेकिन जरूरी काम, सुरक्षा, दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हर उपयोगी परियोजना को पर्याप्त योगदानकर्ता नहीं मिलते। आधुनिक ओपन सोर्स जगत में कंपनियां, फाउंडेशन और भुगतानित अनुरक्षक इस कमी को आंशिक रूप से भरते हैं। इसलिए पुस्तक प्रेरणा की शक्ति दिखाती है पर टिकाऊ सहयोग के लिए संसाधन और शासन की आवश्यकता को भी सोचने के लिए छोड़ती है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक सॉफ्टवेयर डेवलपरों, तकनीकी टीम लीडरों, उत्पाद प्रबंधकों, ओपन सोर्स योगदानकर्ताओं और डिजिटल समुदायों में सहयोग को समझने वाले पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जिन पाठकों को केवल प्रोग्रामिंग तकनीक नहीं बल्कि यह जानना है कि लोग बड़े, जटिल और साझा तकनीकी कार्यों को कैसे संगठित करते हैं, उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। इसकी व्यावहारिक उपयोगिता जल्दी प्रतिक्रिया लेने, छोटे बदलावों में जोखिम घटाने, उपयोगकर्ताओं को विकास प्रक्रिया में शामिल करने और समीक्षा को व्यवस्थित करने के सिद्धांतों में है। आज इसके कई विचार परिचित लग सकते हैं क्योंकि निरंतर एकीकरण, सार्वजनिक रिपोजिटरी, इश्यू ट्रैकर और सहयोगी कोड समीक्षा आधुनिक विकास संस्कृति के सामान्य हिस्से बन चुके हैं। फिर भी यही इसकी ऐतिहासिक और बौद्धिक ताकत है। यह पुस्तक उस समय लिखी गई जब खुले इंटरनेट आधारित विकास को बड़े सॉफ्टवेयर के लिए अव्यावहारिक समझा जा सकता था। रेमंड ने लिनक्स और फेचमेल के माध्यम से इस दावे को एक स्पष्ट, याद रहने वाले रूपक में बदला। समान श्रेणी की प्रबंधन या प्रोग्रामिंग पुस्तकों से इसका अंतर यह है कि यह किसी कठोर प्रक्रिया सूची के बजाय संगठनात्मक दर्शन प्रस्तुत करती है। कैथेड्रल और बाजार का रूपक पाठक को हर परियोजना के लिए एक उपयोगी प्रश्न देता है। कौन सा काम बंद विशेषज्ञता मांगता है और कौन सा काम नियंत्रित खुले सहयोग से बेहतर होगा? इसकी सीमाओं को ध्यान में रखकर पढ़ने पर भी यह ओपन सोर्स आंदोलन और आधुनिक सॉफ्टवेयर सहयोग की बुनियादी पुस्तक बनी रहती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं एरिक एस रेमंड, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।